परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब इन दिनों भजन संहिता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले भजन में हमने देखा कि दाऊद संकट के समय में परमेश्वर की निकटता में बना रहा। आज हम अपने अध्ययन में निरंतर आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 62 उसके 7 पद से अध्ययन आरंभ करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 62 उसके 7 और 8 पद को निकाल लें। लिखा हुआ है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। यह एक अति व्यक्तिगत भजन है। ध्यान दीजिए, मेरा उद्धार, मेरी महिमा का आधार, मेरा बल, मेरा गढ़, ये सब व्यक्तिगत भजन है। आगे हम देखते हैं विश्वास की विजय। भजन संहिता 62 उसके 9 पद में लिखा है, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। उसने सीख लिया था कि जन समूह पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, वे दो चित्ते होते हैं। उसने यह भी देखा था कि अहितोपेल जैसे बड़े लोग भी विश्वास के योग्य नहीं है, उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। एक नए विश्वासी को यह सीखना है, मनुष्य को नहीं परमेश्वर को देखे। नव विश्वासियों में अनेक निरुत्साह, निराश और भ्रमित हुए हैं क्योंकि उनकी आंखें मनुष्यों पर लगी थी। मुझे हाल ही में एक विश्वासी ने बताया कि उसकी आंखें एक मनुष्य पर लगी हुई है और उसने अपने विश्वास का सर्वनाश कर दिया है। दाऊद जानता था कि वह मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकता, अतः उसकी आंखें परमेश्वर पर केंद्रित थी। वह एक ऐसी चट्टान के सहारे था जो हिल नहीं सकती थी। जी हाँ, तब वह कहता है कि हम भौतिक वस्तुओं पर भी भरोसा नहीं रख सकते। भजन संहिता 62 उसके 10 पद में लिखा हुआ है, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। अब निष्कर्ष सुने कि आप परमेश्वर पर क्यों भरोसा रख सकते हैं। भजन संहिता 62 उसके 11 पद में आगे लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। वह किसी भी सामर्थ्य कार्य को कर सकता है। वह सर्वशक्तिमान है और जो चाहे वह कर सकता है। दाऊद सामर्थी नहीं था, वह एक महान राजा बना क्योंकि परमेश्वर ने उसे महान राजा बनाया था। अब परमेश्वर ने मनुष्य को अनुमति दी कि उसे यरूशलेम छोड़ने पर बाध्य करे और यदि परमेश्वर की इच्छा ना हो तो वह यरूशलेम नहीं लौटेगा। वह सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता है क्योंकि वही एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सत्ता के लिए पागलपन इस समय की संसार में विनाश का कारण है। सत्ता ही की लालसा में बम बनाया गया ऐसा सामर्थ्य विनाशकारी है। यह सत्ता के लिए मानवीय प्रयास है, परंतु दाऊद कहता है कि उसने देखा है कि सच्ची शक्ति के साथ कुछ और भी है। भजन संहिता 62 उसके 12 पद में लिखा हुआ है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। यदि आपके हाथ में सामर्थ्य है तो आपको दया दिखाना चाहिए। दाऊद कहता है कि उसका परमेश्वर जो सामर्थ्य प्रदर्शन करता है वह दया भी दिखाता है। उसने सदोक से कहा कि वह दया के आसन को पुनः मंदिर में स्थापित कर दे, क्योंकि उससे परमेश्वर से दया प्राप्त होगी। पुराने नियम के धर्म के केंद्र में दया का आसन विद्यमान था। आज मसीही विश्वास का केंद्र भी दया ही है। पाप से पीड़ित प्रत्येक प्राणी आओ, प्रभु के पास दया है। मेरे विचार में जॉर्ज बर्नार्ड ने जब लिखा, मैं उस प्राचीन कठोर क्रूस को थामे रहूंगा, तो उसका कहने का अर्थ यही था, दया। मेरे मित्रों, मैं एक सुझाव आपको देता हूं। यह भजन परमेश्वर के साथ संबंधों की सरल व्याख्या करता है। दाऊद परमेश्वर के समक्ष अपना दिल खोलकर रख देता है। वह परमेश्वर से कहता है, तू मेरा उद्धार है, मेरी चट्टान है। बहुत लोग प्रार्थना सभा में और आराधना में परेशान से हो जाते हैं। वे प्रार्थना में पीड़ित होते हैं, क्योंकि वे सही बात और सही शब्दों का उपयोग करना नहीं चाहते। सार्वजनिक प्रार्थना अच्छी है, परंतु मेरा सुझाव यह है कि आप अलग जाकर अकेले में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। आप कार भी चला सकते हैं या कोई एकांतवश भी खोज सकते हैं, चाहे वह आपके घर में हो या कहीं और, परमेश्वर के सम्मुख शांत रहने का स्थान, और तब अपनी भावनाओं को खोलकर उसके सम्मुख रख दें। कमर कसने का समय है तो कमर ढीली करने का भी समय है कि आप परमेश्वर के समक्ष सब कुछ कह दें। मेरे मित्रों, कलीसिया में बहुत सारे लोग अपने दान अर्पण करते हैं और इसके द्वारा से कलीसिया अपनी सेवकाई में आगे बढ़ती है। और एक जगह पर एक गलीचे को खरीदा गया जिस पर लोग घुटने टेक करके प्रार्थना में अपने समय देते हैं। यदि आपके पास ऐसा है तो आप भी करें, यह सबसे अच्छी औषधि है। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 62 समाप्त होता है। अब हम भजन 63 में जाते हैं। इसका विषय है जीवन जल की प्यास। यह भजन दाऊद ने तब लिखा था जब वह यहूदा के जंगल क्षेत्र में था। यह एक विशेष भजन है। यह एक लेप है जो सब घावों पर लगाया जा सकता है। यह चोटों पर बांधने वाली पट्टी है। यह घाव के भरने में सहायक अंजन है। कलीसिया के लिए यह एक अनुपम भजन रहा है। यह जीवन जल की प्यास का उल्लेख करता है। ख्रिस्तो स्तंभ ने कहा कि यह आरंभिक पितरों द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित था कि इस भजन के गाए जाने के बिना एक दिन भी नहीं बीतना है। आरंभिक कलीसिया में यह भजन प्रतिदिन प्रातः काल या सार्वजनिक सभा में सदैव गाया जाता था। यह भजन अद्भुत विचारों की अभिव्यक्ति है। तो आइए आप मेरे साथ भजन 63 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। डॉक्टर गबलिन ने इसका अनुवाद इस प्रकार से किया है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे भोर को खोजूंगा। निर्जल सूखी भूमि प्यासी धरती पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरी देह तेरे लिए तड़पती है। जब मैं पवित्र स्थान में तेरे सामर्थ्य और महिमा के लिए तुझे देखता हूँ। मेरे प्रियो, यह केवल विश्वास ही है जो ऐसी प्रार्थना कर सकता है। अनंत परमेश्वर मानवीय कल्पनाओं के परे जाता है। वह सृजनहार है, वह मुक्ति दाता है, वह मेरा पिता है। उसी की खोज में दाऊद रहता था। वह जानता था कि प्यासा होना क्या है। वह मृत सागर के निकट गुफाओं में छिपा था। वह स्थान सूखे स्थानों में से एक है। वहां आपको प्यास लगना स्वाभाविक है। यदि आप वहां जाएं तो पानी साथ में ले जाना न भूलें। दाऊद का प्राण परमेश्वर का प्यासा था। क्या आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं? क्या आपके मन में उसके लिए प्रेम है या उसके लिए बोझ है? काश हम उसके प्यासे हो। भजन संहिता 63 उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। दाऊद कहता है कि वह एक अति उत्तम भोजन की अपेक्षा परमेश्वर की संगति में रहेगा। भजन संहिता 63 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद को जब रात में नींद नहीं आती थी, तब वह परमेश्वर के बारे में सोचता था और चिंतन करता था। परमेश्वर की भलाई पर विचार करना भेड़ों के गिनने से कहीं उत्तम है। भजन संहिता 63 के 8 पद में लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। मेरे मित्रों, काश हमारा प्राण परमेश्वर की यत्न से खोज करे। यह एक अनुपम भजन है। स्मरण रखें कि यह प्रातःकालीन भजन है और आरंभिक कलीसिया के प्रत्येक आराधनालय में गाया जाता था। शायद हम आज इसे गा नहीं सकते, मैं नहीं जानता। यहाँ पर भजन संहिता 63 समाप्त होता है और अब हम भजन 64 से देखेंगे, जिसका विषय है, दुष्ट जयवंत होगा परंतु परमेश्वर से दंड पाएगा। यह भजन भी दाऊद के जीवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है, जिसे हम ठीक से निर्धारित नहीं कर सकते। भविष्यवाणी के परिप्रेक्ष्य में यह महाक्लेश में इसराइल के भक्तों का भजन होगा। अब कोई कहे, याकूब के संकट के तो अनेक भजन हैं। जी हाँ, हैं, और प्रत्येक की आवश्यकता होगी। यह आपके और मेरे लिए भी एक अति उत्तम भजन है। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 64 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब तू मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। एक बार फिर दाऊद परमेश्वर से याचना करता है कि वह उसे छिपा ले। दाऊद बार बार यह प्रार्थना करता है। प्रार्थना ही उसकी शरण थी, उसकी एकमात्र गढ़। महाक्लेश के समय प्रार्थना इसराइल की एकमात्र शरण होगी। यह संक्षिप्त भजन परमेश्वर में दाऊद के विश्वास की अभिव्यक्ति के साथ समाप्त होता है। उसका परमेश्वर उसकी एकमात्र आशा है। भजन संहिता 64 उसके 7 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे, वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाएंगे और गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। मेरे मित्रों, मैं आज के संसार को देखकर यही निष्कर्ष निकालता हूं कि हमारी आशा न तो नेताओं में है और न ज्ञान और विज्ञान में है। वे सब निराशाएं हैं। हमें वही करना है जो दाऊद ने किया और इसराइल भविष्य में करेगा। ऊपर दृष्टि उठाएं। आज हमारी एकमात्र आशा परमेश्वर है। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ें और भजन संहिता 65 और 66 को देखें, जिसका विषय है, सहस्त्र वर्षीय राज का गीत। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, इसे पुनरुद्वार का भजन भी कहते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 21 पद में लिखा है, जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। मित्रों, यहाँ पर सब बातों का सुधार का अर्थ यह नहीं कि सबका उद्धार होगा। वे जो सुधारवाद का विचार मानते हैं, इस पद को अपनी बात का प्रमाण मानते हैं। ये सब वस्तुएं क्या है? फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस कहता है, सब वस्तुएं लाभ की नहीं। तब क्या वह संपूर्ण जगत के लिए कह रहा था? कदापि नहीं। इसी प्रकार यहाँ सब वस्तुएं निम्नलिखित के द्वारा सीमित हैं। सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल में या प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। भविष्यद्वक्ताओं के मुख से परमेश्वर ने इसराइल के पुनरुद्वार की चर्चा की थी। मृतक दुष्टों के उद्धार की चर्चा भविष्यवाणियों में कहीं भी नहीं है। भजन संहिता 65 के 1 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। यह पद स्वर्गिक सियोन की चर्चा नहीं कर रही है, यह पृथ्वी पर स्थित एक स्थान है। मैं सियोन पर्वत के बारे में तो जानता हूँ, परंतु वहां गया नहीं, और अभी तक मैं स्वर्ग पर भी नहीं गया। विश्वास कीजिए, वह तो एक कठिन पर्वतारोहण था, अतः दाऊद सियोन पर्वत के विषय में ही कह रहा था। भजन संहिता 65 के 4 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उद्धार प्राप्त मनुष्यों की नाई वे अपने हर्ष को व्यक्त करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं भजन 65 उसके 9 से 13 पद में, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है, तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधती है, चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई हैं, वे जय जयकार करती और गाती भी हैं, हर एक वस्तु स्तुति गाएंगे। यह सहस्त्र वर्ष का एक अति मनोहर दृश्य है, जहां रेगिस्तान गुलाब का सा फैलेगा और पृथ्वी पर शांति होगी। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 65 समाप्त होता है और अब हम भजन 66 में आते हैं। भजन 66 प्रधान बजाने वाले के लिए एक गीत है या भजन है। क्या यह भजन दाऊद का है? स्पष्ट तो नहीं है, परंतु संभवतः यह दाऊद का ही भजन है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अज्ञात है, अनेकों ने इसकी रचना की प्रेरणा पर विचार व्यक्त किया है। यह परमेश्वर की स्तुति का भजन है और आराधना का अद्भुत गीत है। भजन संहिता 66 उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। यह पद स्वदेश लौटने की इसराइल की भावी आशा है। यज्केल कहता है कि उस दिन वे बलिदान चढ़ाएंगे। इसकी व्याख्या क्या है? जिस प्रकार पुराने नियम के बलिदान मसीह के आगमन का प्रतीक थे, उसी प्रकार भविष्य में वे बलिदान चढ़ाएंगे जो मसीह के आ जाने का प्रतीक होंगे। प्रत्येक मेमना जगत के पाप उठा ले जाते मेमने की ओर संकेत करेगा। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 66 भी समाप्त होता है और अब हम भजन संहिता 67 से अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। यह सबसे छोटे भजनों में से एक है, इसके केवल 7 पद हैं। मैं मानता हूँ कि धर्मशास्त्र में अंकों का बहुत महत्व है। मेरे विचार में आप इसकी जड़ तक जा सकते हैं। 7 का अंक सिद्धता की अपेक्षा परिपूर्णता का अंक अधिक है और जब कोई काम पूर्ण हो जाए तो उसका अभिप्राय सिद्धता से ही है। यह भजन इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर की अंतिम इच्छा और योजना को प्रकट करता है। यह राज्य का एक महान भजन है। कुछ टीकाकार इसे मिशनरी भजन या सेवकाई का भजन भी कहते हैं। वे इसका विषय सहस्त्र वर्षीय राज्य के उत्तर काल में कलीसिया द्वारा संसार के मन फिराव से संबंधित मानते हैं, परंतु सच तो यह है कि यह सेवकाई भजन नहीं है। इसमें कलीसिया का दृश्य कहीं भी नहीं है। मैं नहीं मानता कि भजनों में कलीसिया प्रतीक रूप है। रूपकों की अपेक्षा वास्तव में यह व्यक्त है। उदाहरण के लिए, हमने भजन 45 में कलीसिया का रूपक देखा था। पटरानी ओपिर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। यह कलीसिया का वह प्रतीक है जब वह प्रभु यीशु के पृथ्वी पर राज करते समय उसके साथ होगी। भजन संहिता 67 भविष्यवाणी का भजन है जो इस युग से परे प्रभु के राज के युग की ओर देखता है, जिसमें आप एक बदले हुए संसार को, उद्धार प्राप्त संसार को देखेंगे। उस संसार में परमेश्वर हमें निश्चय ही आशीष देगा और पृथ्वी का कोना कोना उसका भय मानेगा। उस समय श्राप जाता रहेगा और हम स्तुति गान गाने योग्य हो जाएंगे। मैं भी उस समय हल्लेलुया गीत गाने में सक्षम हो जाऊंगा। धर्मशास्त्र के अर्थ निर्धारण और उसकी व्यावहारिकता में अंतर है। मुझे चिंता है कि दीक्षित और बुद्धिमान बनने के प्रयास में अनेक धर्म विज्ञान के ज्ञाताओं और बाइबल शिक्षकों ने एक अति साधारण नियम भुला दिया है, जो धर्मशास्त्र समझने में सहायक है। और यह नियम है, संपूर्ण धर्मशास्त्र हमारे लिए है, परंतु संपूर्ण धर्मशास्त्र हमारे हाथ में नहीं है। इसी प्रकार यह भजन हमारे लिए है, परंतु हमारे हाथ में नहीं है। यह हमें मिशन का परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। अब कोई यह कहे, आप इस भजन में जो कलीसिया से परे की चर्चा करता है, उसमें मिशन की चर्चा कैसे संभव है? बाइबल के वचन की व्याख्या का महान सिद्धांत अर्थ निर्धारण और व्यवहारिकता में अंतर प्रकट करता है। अर्थ निर्धारण निश्चयात्मक होता है, इसमें परंतु का कोई भी स्थान नहीं है। यह एक प्रकार का सांचा है। यह आधारभूत है, अर्थात धर्मशास्त्र का एक निश्चित अर्थ है। इसका अर्थ आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा या वैसा नहीं हो सकता, परंतु व्यवहारिकता लचीली होती है। परंतु उसे यथोचित व्यवहारिक होने के लिए अर्थ निर्धारण पर आधारित होना है। मेरे मित्रों, मैं इसका एक सरल उदाहरण देता हूं। हीरे को मूल्यवान होने के लिए काटा जाना और जड़ा जाना आवश्यक है, जिसे सही उंगली में पहनना होगा। एक बार एक दुकान में मुझे एक छोटे से हीरे के टुकड़े को देखने का मौका मिला। मैंने देखा कि प्रदर्शनी में सब जन उसे देखने के लिए रुक रहे थे, जो मनुष्य के मन की लालसा प्रकट करती थी, परंतु वह हीरा उंगली पर पहनने योग्य नहीं था, अतः उसका कोई मूल्य नहीं था। यदि वह लूटने का प्रयास किया जाए तो वह स्वतः ही तिजोरी में प्रवेश कर जाएगा, जो भूतल में कहीं होगी। जहां तक मैं समझता हूं, वह हीरा किसी काम का नहीं है, वह बस एक बड़ा हीरा है जिसकी किस्मत खराब है, अर्थात उपयोगी होने के लिए उसे पहना जाने योग्य होना है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र को भी यथास्थान रखना होगा, तदुपरांत अनुभव की उंगली में पहनना होगा। व्यवहारिकता यही है। एक पुरानी कहावत है, यदि जूता आपको आ जाए तो पहन लो। यदि भजन आपसे बातें करे तो आपके जीवन से प्रासंगिक संदेश उसमें है। उदाहरण के लिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु ने एशिया की सातों कलीसियाओं को संदेश दिया। उसके संदेश में तर्कपूर्ण अर्थ था और स्थानीय व्यवहारिकता थी। प्रभु ने अपने संदेश के अंत में कहा, सुने, अर्थात जिसके कान हो वह सुने। वह आपसे भी यही कह रहा है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 पद में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सातों कलीसियाओं के प्रत्येक संदेश में हमारे लिए व्यवहारिकता है। भजन 67 मिशनरी भजन नहीं है, सेवकाई भजन नहीं है, परंतु फिर मैं कहता हूं कि इसमें आपके और मेरे लिए परमेश्वर के सेवकाई कार्यक्रम में कुछ महान सिद्धांत हैं। अब हम इस भजन के कुछ रोचक विषयों का सारांश निकालेंगे। हमको आशीष दे 3 बार आया है, धन्यवाद करें 4 बार आया है। इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति या समूह का उल्लेख है। पहला, परमेश्वर का नाम 15 बार लिया गया है, जिसमें त्रिएकत्व का भी नाम आता है। दूसरा, इसराइल राष्ट्र हम 6 बार आया है। और तीसरा है, देश देश के लोग यह 9 बार आया है, जिसमें परदेशी, विभिन्न जातियां, विभिन्न सामाजिक स्तर, आप और मैं आते हैं। देखिए इस भजन का आरंभ कैसे होता है। भजन संहिता 67:1 में लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मेरे मित्रों, यह पद त्रिएकत्व के संदर्भ में है। यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने इसराइल के वंशजों को मिस्र से निकाल जंगल में ले जाने की तैयारी की थी। उस समय उसने जो महान आशीष दी, वह परमेश्वर के त्रिएक रूप से संबंधित थी, जिसका संदर्भ गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 24-26 पद में पाया जाता है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर कर और तुझे शांति दे। यहां आशीष और रक्षा पिता परमेश्वर की ओर से है। मुख का प्रकाश चमकाना मसीह यीशु का काम है और शांति देना पवित्र आत्मा का काम है। जी हाँ, जैसा हम पहले देख चुके हैं कि इसराइल के कुछ गुरु यहोवा के मुख को मसीह मानते हैं, जो प्रभु यीशु पुत्र परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। अतः यहाँ तीन गुना आशीष है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर से। इस आशीष का उपसंहार गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 27 पद में है, जहां लिखा है, इस रीति से वे मेरे नाम को इसराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। इस आशीष की पूर्ति सहस्त्र वर्षीय राज्य में होगी। भजन संहिता 7 उसके 2 पद में लिखा है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। मेरे मित्रों, जब तक इसराइल फिर से स्वदेश न लौट आए, पृथ्वी के लिए आशीष नहीं होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि आज नहीं, उस समय जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लाएगा, उस समय इसराइल यशाया के वचनों को दोहराने योग्य हो जाएगा। यशाया नबी की पुस्तक 49 अध्याय के 13 पद में लिखा है, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। और पद 14 से 16 में लिखा है, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी प्रजा इसराइल के लिए यही कहता है, या तो परमेश्वर ने जो कहा वह सच है या सच नहीं है, परंतु मैं तो यह मानता हूं कि यह सब सच है। क्या आज आप इस बात को मानते हैं? यदि नहीं, तो आइए हम इस भजन के अनुसार अपने आप को प्रभु की निकटता में लाएं और उस पर विश्वास और भरोसा करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे एवं सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। जल बनाए कौड़ी कौड़ी माया जोड़।